ओम शांति। एक धन के नशे में चूर अत्यंत घमंडी पिता अपने बेटे को लेकर गांव की तरफ जाते हैं देहातों में, और कुछ समय वहां रहते हैं। उनका उद्देश्य था कि अपने बेटे को ये बताऊं कि तुम्हारे पास कैसे सब कुछ है और संसार में कितने लोग हैं जो दुर्भाग्यशाली है, गरीब है, जिनके पास कुछ भी नहीं है। एक हफ्ता 10 दिन वो दोनों उन गरीब लोगों के बीच रहते हैं। वापस आते हैं शहर। पिता पूछते हैं अपने बेटे से कि तुमने क्या देखा, तुम्हारा क्या अनुभव है। पिता ये सोचते हैं कि उसके बेटे को अब ये और पक्का हो गया होगा कि उसके पास कितनी सारी वस्तुएं हैं, कितने सारे सुख के साधन हैं जो संसार में लोगों के पास नहीं है, संसार के लोग कितने गरीब हैं। वो बेटे से कहते हैं कि अपने शब्दों में बताओ तुमने क्या देखा, तुम्हें क्या अनुभव हुआ। वो बेटा कहता है, पिताजी मैंने ये जाना कि हमारे पास एक कुत्ता है और उनके पास 4, हमारे पास लाइट्स है, दिए हैं, उनके पास चांद और सितारे हैं। मैंने ये जाना कि हमारे पास गार्डन में एक स्विमिंग पूल है और मैंने देखा उनके पास पूरी नदी है जिसका कोई अंत नहीं। वो बेटा कहता है, पिताजी मैंने ये भी देखा कि हमें भोजन खरीदना पड़ता है पर वो भोजन खुद बनाते हैं, अपना भोजन खुद उगाते हैं। वो कहता है, मैंने ये भी देखा हमारे पास आंगन है, उनके पास क्षितिज है जिसका कोई पारावार नहीं। वो बेटा कहता है कि हमारे पास सुरक्षा के लिए फेंस, दीवार है बड़ी बड़ी, उनके पास किसी दीवार की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके मित्र ही उनकी रक्षा करते हैं। वो बेटा कहता है, हमारे पास छोटी सी जमीन है, उनके पास खेत है। और अंत में बेटा वो कहता है कि पिताजी आज मैंने जाना कि हम लोग कितने गरीब हैं और वो लोग कितने अमीर हैं। सुख, खुशी, आनंद वस्तुओं से नहीं खरीदा जा सकता। मुरली में है, अज्ञानी लोग खरीदने की कोशिश करते हैं प्रसन्नता, परंतु भौतिक वस्तुओं से, संसारी चीजों से, संसारी पदार्थों से, सुख साधनों से आत्मा को कभी भी तृप्ति मिल नहीं सकती क्योंकि आत्मा अनंत है, असीम है। असीम की प्यास असीम ही बुझा सकता है, अनंत की प्यास अनंत ही बुझा सकता है। सब कुछ पाने के बाद भी एक गहरा खालीपन, एक स्पिरिचुअल वैक्यूम, एक आध्यात्मिक रिक्तता हृदय में रहती है। जब तक हम स्वयं की सत्ता को ना जान ले, स्वयं के ऐश्वर्य को ना जान ले, स्वयं के भीतरी साम्राज्य को ना जान ले, तब तक वो रिक्तता, वो एम्प्टीनेस अंदर रहेगी, बाहर का कोई भी सुख, बाहर की कोई भी रोशनी, बाहर का कोई भी दिया भीतर प्रकाश नहीं कर सकता। भीतर की यात्रा अत्यंत अकेले की यात्रा है, भीड़ वहां प्रवेश नहीं कर सकती। भीड़ अंदर है इसीलिए ही समस्या है। अध्यात्म अर्थात भीतरी भीड़ को बाहर कर देना और खुद अंदर प्रवेश करना। तो आज सुबह की अव्यक्त मुरली प्रसन्नता, कितने प्रकार है प्रसन्नता के आज की मुरली से? दो प्रकार, फिर और दो प्रकार, और कहीं तीन प्रकार, एक शॉर्ट लास्टिंग एंड लॉन्ग लास्टिंग, अल्पकालिक दीर्घकालिक, थोड़े समय रहने वाली प्रसन्नता और लंबे समय रहने वाली प्रसन्नता। थोड़े समय जो प्रसन्नता है वो संसार की वस्तुओं से प्राप्त हो सकती है, परंतु यदि वो प्रसन्नता लंबा समय टिकानी है तो वस्तु साधन उसका आधार नहीं हो सकते। ये पहला वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण, एक है सदा प्रसन्न, एक है प्रसन्न, एवर हैप्पी और हैप्पी। तीसरा, स्वयं से प्रसन्न। दूसरे में तीन भाग है और तीसरा सेवा से प्रसन्न। दूसरा, दूसरे प्रकार की प्रसन्नता औरों से संबंधित है, उसमें अलग अलग जगह पर तीन बातें बताई है। पहला, हम दूसरों से प्रसन्न हैं। दूसरा, दूसरे हमसे प्रसन्न हैं। और तीसरा, दूसरों की वजह से हम प्रसन्न हैं। दूसरों से हम, हमसे दूसरे, और दूसरों की वजह से, ये तीन बातें दूसरे नंबर की प्रसन्नता के। हम प्रसन्न क्यों नहीं रह सकते, या फिर हम दुखी क्यों है? दुखस्य कौन कारणम्। सारी मुरली सुख, प्रसन्नता, खुशी का अन्वेषण कर रही है। तो क्या कारण है प्रसन्न न रहने के? इच्छा और ईर्ष्या और दिल शिकस्त और दूसरों पर आश्रित और कितने कारण हैं? आठ कारण हैं आज की मुरली से। सबसे पहला, स्वयं को न जानना। प्रसन्न न रहने का पहला कारण, जो पहला पाठ है, मैं कौन, वो भूले हुए है, जानते हैं परंतु विस्मृत है। Who am I? मैं कौन हूं, यही भूला हुआ है। इसके वजह से सारा ध्यान कहाँ है? अदर्स पर, दूसरों पर। कौवा सोचता है मैं कितना काला हूं और ये बगुला जो है वो कितना सफेद है। दुखी है अपने कालेपन से, बगुले के पास जाकर कहता है कि तुम तो बहुत सुखी हो संसार में, तुम कितने सफेद हो। बगुला कहता है मैं भी ऐसा ही मानता था कि मैं बहुत सुखी हूं, बहुत सुंदर हूं, पर जिस दिन मैंने तोते को देखा, दो दो रंग, मेरी खुशी समाप्त हो गई। एक ही रंग पकड़ा हूं, उसको देखो दो दो रंग है। कौवा तोते के पास जाता है, तोता कहता है मैं भी यही समझता था कि मैं सबसे सुंदर हूं, पर जिस दिन मैंने मोर को देखा मल्टी कलर्ड, मेरी खुशी समाप्त हो गई, लगा कि मैं भ्रम में जी रहा था। कौवा मोर के पास जाता है, मोर प्राणी संग्रहालय में है, जू में। कौवा कहता है कि तुम कितने सुखी हो, सब कुछ तुमको मिलता है, हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं, और कितना तुम्हारा सौंदर्य है। मोर कहता है मेरा सौंदर्य ही मेरे दुख का कारण है। ये पूरे प्राणी संग्रहालय में हर प्रकार के पक्षी पशु है, एक कौवा छोड़कर। वो एक ही है जो आकाश में उन्मुक्त गगन में स्वतंत्र घूमता है, उससे अधिक सुखी तो संसार में कोई भी नहीं है। ये कालापन जैसे उसके लिए वरदान है। मैं कौन हूं यही भूला हुआ है। तुम जैसा, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। यू आर यूनिक, इनकम्पेरेबल। तुम्हारा कंपैरिजन, तुम्हारी तुलना, अतुल हो तुम। तुम्हारी तुलना किसी के भी साथ नहीं की जा सकती। तुम में जो है वो इस संसार में और किसी के भी पास नहीं। ये तो ठीक है, मनुष्य अपनी तुलना मनुष्य से करता है, अगर वो अपनी तुलना झाड़ से करने लगे, पशु पक्षियों से करने लगे, चांद सितारों से करने लगे, सूरज से करने लगे, तो कितना दुखी हो जाएगा। मनुष्य से तुलना कर कर ही इतना दुखी है, पक्षी से तुलना करे तो दुखी हो जाएगा, मैं उड़ नहीं सकता, मैं उड़ नहीं सकता। मछली से अगर तुलना करे तो मैं तैर नहीं सकता, कितना कितना दुखी हो जाएगा। जलसी का मूल कारण ईर्ष्या का बीज है तुलना, कंपैरिजन। कंपैरिजन अगर हट जाए तो ईर्ष्या नहीं रहेगी। तो अप्रसन्न होने का सबसे पहला कारण स्वयं की विस्मृति, आत्मसत्ता की विस्मृति। स्वयं के अस्तित्व को हमने पूरी तरह नहीं जाना है। इस परिवार में ही नहीं, इस संपूर्ण जगत में मैं एक उत्कृष्ट कलाकृति हूं। आई एम अ मास्टरपीस। मेरे जैसा ना कोई था, ना कोई है, और ना कोई होगा। रोज इस वाक्य का अभ्यास करना है, मेरे जैसा इस संसार में ना तो कोई था, ना कोई है, और ना कोई होगा। तो सबसे पहला कारण स्वयं की विस्मृति। सारे स्वमान क्या करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि मैं कौन हूं। दूसरा कारण अप्रसन्नता का, बाप ने जो बनाया या दिया उसको भूले हुए, अर्थात प्राप्तियों की विस्मृति। सारा चिंतन किसका चल रहा है, अभाव का, डिफिशियंसी का, जो नहीं है उसका, और जो है, जो मिला है, जो दिया गया है, उसका हमने इतना चिंतन किया ही नहीं है। मधुबन में आने का अवसर, मधुबन में रहने का अवसर, मधुबन में अमृत वेला करने का अवसर, मधुबन में सेवा करने का अवसर, ब्राह्मणों की सेवा करने का अवसर, पवित्र जीवन जीने का अवसर, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने का अवसर, शरीर में रहते शरीर से डिटैच्ड होने का अवसर, इतना कुछ मिला है, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। जो मिला है उसकी विस्मृति और चिंतन हम किसका कर रहे हैं? जो नहीं मिला, जो नहीं है, जो दूसरों के पास है। एक पत्थर तोड़ने वाला बहुत दुखी है, बड़े बड़े पत्थर तोड़ता है, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। कब तक आखिर यही काम, कठोर काम, पत्थर ही तोड़ता रहूं? देखता है एक साहूकार जा रहा है, सोचता है मैं भी साहूकार बन जाऊं तो कितना अच्छा होगा। भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे साहूकार बना। अचानक फरिश्ता प्रकट होता है। कहानी झूठी है पंचतंत्र की, पर उसके झूठे होने से उसका जो बोध अर्थ है वो कम नहीं हो जाता। फरिश्ता कहता है जो तुम सोचोगे और जो तुम चाहोगे वही होगा, तथास्तु। वो साहूकार बन जाता है, इतना खुश हो जाता है, पालकी में बैठ के जा रहा है। परम दोषी उसकी ये खुशी अल्पकाल है, थोड़ी देर में देखता है राजा जा रहा है उसके सामने। ये पालकी तो जैसे बैलगाड़ी लगने लगती है उसे। फिर से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे राजा बना दे। राजा बन जाता है, तथास्तु। फिर से फरिश्ता, राजा जा रहा है पालू हाथी पर बैठकर, पर सूरज की किरणें उसके चेहरे को जला रही है। गुस्सा करता है सूरज पर, इसका अर्थ ये हुआ सूरज मुझसे अधिक शक्तिशाली है, हे प्रभु मुझे सूरज ही बना दे। तथास्तु, सूरज बन जाता है। अब बहुत खुश है, सारी धरती को जलाऊंगा, पर मेरे किरणों के बीच ये बादल कहां से आ गए? अर्थात बादल मुझसे अधिक शक्तिशाली है, हे प्रभु मुझे बादल बना दे। बादल बन जाते, अब वर्षा ही वर्षा पूरी धरती पर ये क्या, चट्टानों पर, पर्वतों पर मेरे वर्षा का कोई प्रभाव नहीं, वो तो वैसे के वैसी ही है, वो चट्टाने, वो पत्थर, अर्थात पत्थर मुझसे अधिक शक्तिशाली, हे प्रभु मुझे पत्थर बना दे। और पत्थर को तोड़ने, एक पत्थर तोड़ने वाला आ जाता है, अर्थात ये मुझसे अधिक शक्तिशाली, हे प्रभु मुझे पत्थर तोड़ने वाला बना दे। फिर से वो वही बन जाता है जो शुरुआत में था, पर अब वो बहुत खुश है, बहुत खुशी खुशी से पत्थर तोड़ रहा है। पहले भी वही था, अभी भी वही है। अभी समझ में आया कि मैं क्या हूं, मेरे पास क्या क्या है। तो दूसरा कारण खुशी प्रसन्नता गुम होने का, जो पाया है, जो मिला है उसकी विस्मृति, फिर से याद करना। कितनी मूर्तियों में आता है, खजानों की लिस्ट बनाओ, प्राप्तियों को सामने रखो, अमृत वेला, भाग्य की स्मृति में रहो। तीसरा कारण अप्रसन्नता का, खजाने को अपने अंदर समाया नहीं है, प्राप्तियों को क्या नहीं किया, समाया नहीं है। समाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चिंतन, मनन, एकांत में और मौन में। जो कुछ मिला है, बाबा ने कहा ना, सबको एक जैसा दिया है, किसी को आधा, किसी को चौथा, सबको सर्वशक्तियां दी गई है, सर्वगुण संपन्न, सब कुछ दिया गया है हर एक को। जो दिया गया है उसको समाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चिंतन, मनन, डूबना पड़ेगा उन खजानों में। और इसके लिए क्या चाहिए? मौन और एकांत और अंतर्मुखता। तो ये मुख्य तीन कारण है। जिस वजह से दुखी है। इसलिए चिंतन ये छोड़कर कुछ और चल रहा है, दूसरों का, दूसरों को क्या मिला है उसका। चौथा कारण, अपनी विशेषता को कार्य में नहीं लगाया। हमारी ग्रेटेस्ट वीकनेस हमारी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ बन सकती है। हमारी सबसे बड़ी जो कमजोरी है, सबसे बड़ी, उसी को क्या कर देना है, अपनी सबसे बड़ी ताकत बना देना है। ऐसा संसार में लोग कहते हैं, वो कमजोरी को ताकत बनाने की बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, जो विशेषता है उसको क्या करो, यूज करो। उससे क्या होगा, एक उसके आगे जीरो लग जाए तो कितना बनेगा, 10 और जीरो, 100 और जीरो, 1000, हिसाब निकालते जाओ। एक विशेषता दूसरी विशेषता को आकर्षित करेगी, खींचेगी। अपनी विशेषता को पहचानो, ये अहंकार नहीं है, क्योंकि आत्मा एक हीन भावना में कई बार रहती है कि सभी मेरे से आगे निकल रहे हैं, जो नए नए आए हैं वो मेरे से आगे निकल रहे हैं, हम इतने पुराने हैं फिर भी पीछे रह गए। ये हीन भाव, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का भाव, सेल्फ विक्टिमाइजेशन का भाव, खुद के हाथों से खुद ही का शिकार करते हैं, दुखी होते हैं, सोरो एब्जॉर्प्शन, दुख को सोख लेते हैं स्पंज की तरह, और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, सब मेरे से अच्छे है, सब मेरे से आगे है, सब में कुछ ना कुछ है, मुझे में कुछ क्यों नहीं है। बाबा ने कहा, ड्रामा अनुसार नियम प्रमाण, ऐसा हो नहीं सकता कि किसी में कोई विशेषता ना हो। ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा विशेष है। चुना किसने है, स्वयं भगवान ने। गॉड सिलेक्टेड, गॉड इलेक्टेड, गॉड चोजन। भगवान ने चुना है, भगवान ने सिलेक्ट किया है। कितने लोग आए थे इंटरव्यू के लिए, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है। कितने लोग बैठे थे इलेक्शन में, खड़े हुए थे कितने लोग, परंतु सब गिर गए। यू आर गॉड इलेक्टेड, गॉड सिलेक्टेड एंड गॉड चोजन। पूरे शहर में, पूरे गांव में कई लोग हैं, पूरे गांव में एक ही व्यक्ति ज्ञान में चलता है, उसको भगवान ने चुना है, और उसकी चॉइस गलत नहीं हो सकती। जरूर उसने कुछ पोटेंशियल, कुछ संभावना, कुछ सुप्त शक्तियां उस आत्मा में देखी होगी, इसीलिए उसको चुन लिया। संसार की भीड़ से चुने हुए, उसे लगा होगा ये मेरे काम में आएगा। अपनी विशेषता को पहचानो। हीन भाव, जैसे सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, अहंकार है, वो बहुत खराब है, उसी तरह हीन भावना, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, खुद ही दुखी होते रहना, घुटते रहना, मरते रहना, जलते रहना भीतर ही भीतर, ये तो उससे भी खतरनाक है। जो अहंकारी व्यक्ति होता है उसमें कॉन्फिडेंस तो होता है, पर जो हीन भावना में जीता है उसमें तो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, कॉन्फिडेंस गया। अंग्रेजी में कहते हैं डिफिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये बड़ी खतरनाक अवस्था है, क्योंकि ये धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर ले जाती है, और जहां डिप्रेशन आ गया वहां सारा पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है, उदासी ही उदासी छाई रहती है, सब कुछ व्यर्थ नजर आने लगता है, फिर जीवन भी व्यर्थ नजर आने लगता है, केवल ब्राह्मण जीवन नहीं, सारा ही जीवन व्यर्थ नजर आने लगता है। स्वयं की विशेषता को पहचानो। एक 10 साल का बालक होता है, उसका लेफ्ट हैंड कट जाता है, फिर भी उसे इच्छा होती है कि मुझे जूडो सीखना है। वो एक बहुत प्राचीन मास्टर के पास जाता है, जूडो मास्टर, कहता है मुझे जूडो सीखना है, सिखाओ। उसकी उमंग, उसकी लगन देखते हुए वो मास्टर उसे जूडो सिखाता है, पर सारी ट्रेनिंग में उसे बस एक ही मूव, एक ही प्रकार से वार कैसे करना, वो एक ही मूव, इतनी सारी दूसरी दूसरी बातें हैं वो कुछ भी नहीं सिखाता है, एक ही सिखाते रहता है लास्ट तक। वो कहता है जैसे दूसरों को अलग अलग सिखाते हो, मुझे भी कुछ वैरायटी सिखाओ। वो कहते हैं नहीं, तुम ये एक ही सीखो। और वो इतना निष्णात, इतना ट्रेंड हो जाता है उसे एक मूव में कि वहां जो कंपटीशन होती है उसमें जीत जाता है, अगली कंपटीशन में भी जीत जाता है, उसके आगे और एक कंपटीशन होती है उसमें भी जीतता है, और एक सबसे खतरनाक कंपटीशन होती है जिसके जिसमें उसका सामना एक ऐसे व्यक्ति से है जो उससे 10 गुना अधिक शक्तिशाली है, जिसके दोनों हाथ है, पर फिर भी उस खेल में भी वो जीत जाता है। वो अपने मास्टर से पूछता है कि मेरे जीतने का क्या कारण है। वो मास्टर कहता है कि तुम जीते केवल उस एक मूव की वजह से, वो जो एक तुमको सिखाया था, क्योंकि उस एक टेक्निक में तुम्हारे सामने जो शत्रु था, अगर उसे अपनी रक्षा करनी है तो उसे तुम्हारा लेफ्ट हैंड पकड़ने की आवश्यकता थी, और तुम्हारा तो लेफ्ट हैंड था ही नहीं, इसलिए तुम्हारी जीत हो गई। और दूसरी बात, उसने तुमको कमजोर समझा इसलिए वो हारा। इस बच्चे की सबसे बड़ी कमजोरी थी एक हाथ ही नहीं है, फिर भी सीखा, लगन है, लक है सीखने की। तो हमारे सामने चाहे कुछ भी बाधा हो, कैसी भी बाधा हो, यदि हमें आगे बढ़ना है, फूल जिसने उगाने की सौगंध ली वो मगन हो के चलता रहे, चाहे धरती हो कितनी कठोर, हर घड़ी चलते हैं वो उजाले की ओर। वो रुकेंगे नहीं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, लोग कितना भी विरोध कर रहे हो, प्रतिकूल परिस्थितियों में ही संपन्न बना जाता है। तो चौथा, अपनी विशेषता को पहचानना, कार्य में लगाना। कार्य में न लगाना कारण है प्रसन्न न रहने का। पांचवा कारण, अप्रसन्नता का, टाइम पर लगाना है। कार्य में कब लगाना है? समय पर, नहीं तो समय की गाड़ी छूट जाएगी, चाहे 1 सेकंड या 1 घंटा। कोई कहे कि मैं 1 सेकंड ही लेट हुआ हूं, पर गाड़ी तो छूट गई ना, उस गाड़ी को तो रोका जा सकता है। समय की गाड़ी को कोई भी नहीं रोक सकता। जो समय अब है, अभी है, इस समय है, बस यही पुरुषार्थ का समय है, नाउ। कल सुबह का नहीं, अभी इसी वक्त यहां। हो सकता है यही हमारे जीवन की अंतिम रात हो, कोई गारंटी कर सकता है? मैं कल सुबह अमृत वेला जागूंगा? टाइम पर, समय पर अपनी विशेषता को कार्य में न लगाना हमारे दुख का कारण है, अप्रसन्नता का कारण है। छठवा, दिल शिकस्त, उदास, भाग्य को दोष देना। मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे साथ ऐसा ही होता है, बचपन से ही ऐसा होता आ रहा है। जो हम सूक्ष्म में मन में सोचते हैं वो ही हो रहा है। यदि सारी दुनिया हमारा विरोध कर रही है, उसका संकल्प मन में है, चिंतन किया है सूक्ष्म में कि मैं जो भी अच्छा करने जाता हूं सब मेरे विरोध में हो जाते हैं, क्यों हो रहे हैं? वो हिसाब किताब अलग बात है, परंतु हमारे संकल्प ही ये करा रहे हैं। सूक्ष्म में हमने ही सोचा है इसलिए ऐसा हो रहा है। जो कुछ घटनाएं हो रही है हमारे संकल्पों का परिणाम है। हमारे विचार प्रकृति में जा रहे हैं, उन्हीं तरह के विचारों को आकर्षित कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही है और घटनाओं का निर्माण हो रहा है। सब मेरे विरोधी है, सब मेरे विरोधी है, निरंतर ऐसा सोचने वाले के सब विरोधी जो दोस्त है वो भी विरोधी हो जाएंगे। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण, बीज से कनेक्शन कम है। अगर बीज से कनेक्शन शक्तिशाली है तो झाड़ के सारे पत्ते अपने आप सहयोगी हो जाएंगे। तीसरा, दिखावे की इच्छा है, कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट है, आडंबर है, ढोंग है। दूसरों को पता चले मैं हूं, मेरी सेवाएं क्या है, यह इच्छा दूसरों को विरोधी बना रही है। ये तीन कारण है। दिल शिकस्त हो जाना, दुखी हो जाना, उदास हो जाना, नाराज हो जाना, रूठ जाना, और रूठने का कारण हमारी अपनी इच्छाएं है और अपेक्षाएं है। बाबा ने कहा इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। हम जो सोचते हैं लोग उसके विरोध में करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। इस संसार के लोग पहले ही दुखी है, उनसे क्या अपेक्षाएं रखे। हर एक अपने दुख दर्द में जी रहा है, अतीत का बोझ लिए हुए, भविष्य की चिंताओं के साथ। दुखी हो जाना, दिल शिकस्त हो जाना, नाराज, उदास, डिसहार्टन्ड, और जब भी ऐसा हो दूसरों को दोषी नहीं ठहराना। जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस उतना अधिक दुख, जितनी कम अपेक्षा है उतना कम दुख। दूसरे हमारी केयर करे, दूसरे हमारा साथ दे, दूसरे हमें सहयोग दे, दूसरे हमें सम्मान दे, हमारी प्रशंसा करे, एक्नॉलेज करे, रिकॉग्नाइज करे, हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी करे, प्रेम दे, केयर दे, अटेंशन दे, ध्यान दे मेरी तरफ, मुझे समझे, अंडरस्टैंडिंग, सिंपथी, सहानुभूति प्रकट करे, ये सभी रॉयल भिखारीपन है। योगी अर्थात मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। स्थूल तो बहुत दूर की बात, ये जितनी सूक्ष्म बातें बताइए, प्रेम, सम्मान, केयर, लव, ये सब कुछ ये भी भिखारी बना देता है। कुछ भी नहीं चाहिए, I stand alone, दिल शिकस्त। और सातवां, ईर्ष्या। ईर्ष्या का बीज तुलना, कंपैरिजन। और कंपैरिजन करना हमें बचपन से सिखाया गया है, बचपन से ही हमने सीखा है। कुछ भी हम करने जाते हैं तो कंपेयर करते हैं। यदि हम दुखी हो जाए तो ये देखते हैं कि सभी दुखी है, सभी अगर दुखी है तो ठीक है, फिर थोड़ा हल्कापन लगता है। बाढ़ आ गई, खेती को नुकसान हो गया, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी खेती में बहुत नुकसान हो गया, वो पूछता है कि जो बाजू वाला था, पड़ोसी, उसकी खेती को भी नुकसान हुआ है क्या? हाँ हुआ है। और उसके बाजू वाला था, उसके खेती को नुकसान हुआ, उसके भी हुआ, फिर ठीक है, अभी ठीक है, अभी थोड़ी राहत मिल गई। कंपैरिजन, हर जगह कंपैरिजन। जितना अधिक कंपैरिजन हम करते रहेंगे, वो एक दूसरी बात है, हम दूसरों से कुछ सीखे, अच्छी बात है, परंतु इसलिए जेलसी दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव अर्थात हमको लगता है ये बहुत अच्छा है, इससे कुछ सीखा जा सकता है, हम दुखी नहीं हो रहे, सीख रहे, उससे हम सीखे, चाहे चिंतन सीख रहे, चाहे व्यवहार सीख रहे, इटिकेट्स मैनर्स सीख रहे, संयम सीख रहे, कितनी नियमितता है किसी के जीवन में, जरा भी इधर उधर नहीं दिनचर्या, फिक्स्ड है, सीखना है। एक दूसरा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे, केवल कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो जो कर रहा है हम नहीं कर सकते। अब हमारे सामने मार्ग क्या है, एक तो उसकी निंदा, दूसरा उसको नीचे खींचो ताकि वो हमारे लेवल पर आ जाए तो फिर ठीक है। ईर्ष्या, ईर्ष्या अग्नि है, जलाती है, आग है, बेचैनी उत्पन्न करती है, अस्वस्थता है। ये मेरे से आगे कैसे, मेरे होते हुए पीछे से आगे, मेरे से आगे जा रहा है। ये क्यों हम भूल रहे हैं कि हर एक की विशेषता अपनी है और वो नहीं कर रहा है, भगवान उसे यूज किए कर रहे हैं। हमें भी सहयोग देना है, सूक्ष्म शुभ भावनाएं रखनी है। और यहां ऊपर से दिख रहा है कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई पीछे है, कोई आगे है, वास्तव में कौन कितना आगे है किसी को पता नहीं, खाली भ्रम हो रहा है कि ये आगे है ये पीछे है। जिसकी स्थिति आगे है बस वही आगे है। कौन कितने साल से है, किसके पास क्या पद है, पोस्ट है, कितनी सेवाएं की है, ये सब बात की बात है। किसी को कुछ याद नहीं रहेगा क्या सेवाएं तुमने की थी, हाँ उसको केवल एक ही बात याद रहेगी, तुम्हारा व्यवहार कैसा था, मदद मांगी थी, मदद दी थी कि नहीं दी थी, बस वही याद है। बाकी तुमने कितनी सेवाएं की किसी को कुछ पता नहीं। ईर्ष्या, आग, जलन, जितनी ज्यादा ईर्ष्या, जितना ज्यादा कंपैरिजन, उतना अधिक दुख और उतनी कम प्रसन्नता। ये सातवां कारण है। ईर्ष्या से मुक्त कैसे हो, क्या किया जाए? सबकी विशेषता देखना, केवल देखना नहीं, सच्ची दिल से देखना, एप्रिशिएट करना, आगे बढ़ाना और खुद को भी विशेष समझना, जैसे उसमें वो विशेषता है, मुझ में कुछ और विशेषता है। पांच पांडव दिखाए, एक एक में एक एक विशेषता है जो मैं कर सक। बाबा ने किसका उदाहरण दिया, भोली भंडारी, भाषण नहीं है परंतु विशेषता है, महारथियों की लिस्ट में। चाहे स्थूल सेवा ही क्यों ना हो, जो भी सेवा करो अपनी सारी आत्मा को उसमें डाल देनी है, इतनी अहोभाव, अनन्य भाव से। ईर्ष्या से मुक्ति का मार्ग है कंपैशन, रहम। ईर्ष्या से मुक्ति का मार्ग है मैत्री। एक है मित्र, जो बस ये दो ही, ये मेरा मित्र है, उसके ऊपर का शब्द है मित्रता, वो थोड़ा व्यापक है, थोड़ा बड़ा है, और उससे भी ऊपर है मैत्री, कल्याण मित्र कहा जाता है बुद्ध को। मैत्री अर्थात मित्रता फिर भी कुछ लोगों में हो सकती है, पर मैत्री, मैत्री की कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई दीवारें नहीं है, सबसे मैत्री है। ऐसे तीन शब्द है, यार, यारी, याराना। और क्या करें ईर्ष्या से मुक्त होने के लिए, ये सब पता है फिर भी ईर्ष्या होती है, नींद नहीं आती है। वो कोई आकर उसकी तारीफ करे फिर क्या होता है, जिससे हम, जिसको हम अपना शत्रु समझते हैं, और कोई आके उसी की तारीफ करता है, तब क्या करे, कान बंद। शुभ भावना की कमी है, स्टॉक कम है, ये पहले स्वीकार करना पड़ेगा। बाकी सबके प्रति उसके प्रति कम है, उसके अवगुण ही दिखाई दे रहे हैं, अवगुणी दृष्टि है, उस पर काम करना पड़ेगा। कोई बहुत ज्यादा गुणवान है, गुण खल भयम, भर्तरी कहता है जो गुणवान होता है बहुत, जिसमें गुण होते हैं उसके शत्रु भी बहुत ज्यादा होते हैं। सच्चाई के मार्ग में दुश्मनों की कमी बिल्कुल भी नहीं है, भंडार लगे हैं, अंबार लगे हैं दुश्मनों के, और जिसमें अवगुण बहुत है उसके शत्रु बहुत कम होते हैं। जिसमें बहुत ज्यादा गुणवान है वो दुश्मन भी बहुत खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को टॉलरेट नहीं हो पाता है कि हम में वो गुण है ही नहीं और इसमें कहां से आ गया। हम इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अमृत वेला परफेक्ट हो, पर रोज कभी 3 बजे उठते, कभी 4 बजे उठते, कभी 5 बजे उठते, अभी तक स्थिरता नहीं आई है, और इसको देखो तो एकदम स्थिर। ये कैसे हो सकता है? कुछ तो करेंगे। ईर्ष्या, धन्यवाद का भाव प्रकट करना है, करुणा का भाव प्रकट करना है, मैत्री का भाव प्रकट करना है सबके प्रति, तब कहीं ये ईर्ष्या जो है ये कम कम होती जाएगी। और सबसे मुख्य ये कंपैरिजन बंद कर देना है, अपने ही स्वमान का अभ्यास। 8वां कारण अप्रसन्नता का तख्त से नीचे। नीचे क्या है? मिट्टी। मिट्टी मिट्टी में मिल जाए तुम कहते हो, मिट्टी अर्थात शरीर, शरीर को मिट्टी को खाते हो और मिट्टी से खेलते हो, यही दुख का कारण है। बाप ने तुम्हें क्या दिया है? तख्त गोदी में बिठाया है, उसी तख्त पर बैठे रहो, ऊंचाई में बैठे रहो। जैसे ही देहभान में आए, मिट्टी खाने लगे, मिट्टी से खेलने लगे, दुख चालू, अप्रसन्नता चालू। ऐसे मुरली में ये 8 कारण है। और जो प्रसन्न चित्त आत्मा है उसकी 2 चीजों से तुलना की है। कौन कौन सी चीजें? एक वृक्ष और दूसरा सूरज। वो वृक्ष की भांति है, फलदायक वृक्ष की भांति जो शीतलता प्रदान करता है, उसी तरह जो प्रसन्न चित्तात्मा है जो अपने रूहानी वाइब्रेशन से औरों को भी प्रसन्न करता है, वृक्ष की तरह है, फल लगे हुए है। फलों वृक्ष को कोई मारता है तो भी वृक्ष क्या करता है? अपने फल ही देता है। इतनी करुणा, इतनी मैत्री, इतना अहोभाव। दूसरा सूरज, जैसे सूरज अपनी किरणें फैलाता है वैसी प्रसन्नचित्त आत्मा क्या करती है? भुला देती है बहुत सी बातों को, व्यक्ति वायुमंडल को परिवर्तित कर देती है, वातावरण को ही बदल देती है अपनी प्रसन्नता के प्रकंपन से। ये 2 चीजों के साथ तुलना की है। और एक तुलना है मुरली में, धन। कोई लोग धन बहुत है परंतु खर्च नहीं करते, रखा हुआ है, साधन है, यूज नहीं करते, पड़ा पड़ा खराब हो जाता है, दूसरों को भी नहीं देते। एप्पल मिले हैं, एप्पल रख दिए, खुद ना खा रहे ना दूसरों को दे रहे, और जब निकाल के देखते हैं तो सड़ गए, अब फेंक देते, बांटो। ये ईश्वरीय खजाने ऐसे है कि जितने बांटो उतने बढ़ते हैं। बाहर का जो अर्थशास्त्र है वो क्या कहता है कि चीजों को बांटने से क्या होती है? कम होती है। ये आध्यात्मिक अर्थशास्त्र है, वो अर्थशास्त्र जो है वास्तव में अनर्थशास्त्र है। रियल अर्थशास्त्र ये है, जो तुम्हारे पास है वो दे दो तो अपने आप बढ़ेगा। इस हाथ से देते जाओ, इस हाथ में आते जाएगा, इधर से आया इधर से चला भी गया, अनित्य है वो भी, उससे क्या लगाओ। तो ये 2 चीजों का कंपैरिजन, एक ये एक कंपैरिजन मुरली में। प्रसन्न चित्त रहने की और एक विधि भी बताइए, कौन सी? टीचर से मुलाकात, पैदल वॉकिंग, पहले बहुत करते थे अब कम करते। टीचर्स को बाबा ने कहा, बने बनाए पर आए हो, फल बीज उन्होंने डाला, फल खाने आ गए, फल खाने के टाइम पर मेहनत उन्होंने की, एक हाथ में सामान और निकल पड़े। जो सुबह सेवा का स्थान, वही रात में सोने का स्थान। त्याग, त्याग है, तप है, वैराग है। इसलिए अब ऐसी सेवा करो क्वालिटी और क्वांटिटी की। तो सारी मुरली में एक ही बात रिपीट हो रही है, खुशी प्रसन्नता। अपने अप्रसन्नता की लिस्ट बनानी है कि मैं सब कुछ मिलने के बाद भी, ब्राह्मण बनने के बाद भी दुखी क्यों हूं, कौन से सूक्ष्म कारण है। नोट करो और बाबा को खत लिखो। क्या लिखेंगे? कथाएं नहीं। ओके, दूसरे मुझसे ओके, मैं दूसरों से ओके। उसके लिए भी बाबा ने कहा 5% आत्माएं तो ऐसी रहेगी जिन्होंने कसम खा ली है, क्या कि तुमको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, चाहे कितनी भी उनको खुश करने की कोशिश करो, कुछ भी करो, क्योंकि वो जो असंतुष्ट है वो तुम्हारी वजह से नहीं, अपने संस्कारों के वजह से असंतुष्ट है। ये उनकी कमजोरी है असंतुष्टता। सब कुछ मिल जाए, जैसे मैक्सिको में एक जगह पर 2 प्रकार के झरने हैं, एक झरना में गर्म पानी, एक झरने में ठंडा पानी है। वहां की जो माताएं हैं वो कपड़े धोने के लिए पहले गर्म में धोती है फिर ठंडे में धोती है। 2 प्रकार के पानी एक ही जगह पर। एक जर्नलिस्ट वहां पहुंचता है, पत्रकार सबका इंटरव्यू लेता है, कहता है तुम लोग तो कितनी प्रार्थना करते होंगे भगवान से कि 2-2 पानी एक साथ दे दिया। वहां की एक स्त्री कहती है कैसा पानी, साबुन तो दिया ही नहीं, खाली पानी से क्या होता है। सब कुछ है फिर भी दोष तो निकालेंगे। बड़ी शार्प होती है ऐसी आत्माएं, बहुत स्ट्रांग इंटेलेक्ट होता है। बाकी लोग तो स्तुति करते रहेंगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पर ये लोग बहुत एक एक चीज का अन्वेषण विश्लेषण करके उसमें गलत क्या है वो निकालेंगे। हम पर इतना, हमारी इतनी स्टडी कर रही है, कितना धन्यवाद देना चाहिए उनका। इतना टाइम अपना अमृत वेले का त्याग कर, अपने ज्ञान योग को दांव पर रख, मुरली का चिंतन अध्ययन स्टडी छोड़कर हमारे व्यवहार की, हमारे बोल की स्टडी कर रहे हैं। ये हमारे, ये कल्याण मित्र है। ये हमारे बड़े मित्र है। सच्ची मैत्री तो इनसे है, तारीफ करने वालों में क्या मैत्री। अवगुणों को जो पकड़ रहे हैं हमारे, बड़ी तपस्या है उनकी। ऐसे कैसे सदा प्रसन्न रहने वाली आत्माओं को ऐसे ऐसे नॉलेजफुल आत्माओं को ऐसे ऐसे पावरफुल आत्माओं को ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को ऐसे सामना करने और समाने वाली आत्माओं को ऐसे सच्चे सेवाधारियों को ऐसे बड़ी बात को छोटा करने वाली आत्माओं को ऐसे वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने वाली आत्माओं को ऐसे प्रसन्न चित्त आत्माओं को ऐसे सबसे बड़ी सेवा करने वाली, सबसे बड़ी सेवा क्या है, प्रसन्न मूर्त बनना, ऐसी प्रसन्न मूर्त आत्माओं को ऐसे विशेषताओं को जीवन में धारण करने वाली, विशेषताओं को जानने वाली, पहचानने वाली, काम में लगाने वाली, समय पर कार्य में लगाने वाली, विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली आत्माओं को ऐसे तख्त नशीन आत्माओं को, तख्त से नीचे न आने वाली वाली कर्मेंद्रिय जीत आत्माओं को, स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, मिट्टी से न, मिट्टी को न खाने वाली ना मिट्टी से खेलने वाली आत्माओं को ऐसे, बाप को ही संसार बनाने वाली आत्माओं को वही सब कुछ है ऐसे ऐसे। ईर्ष्या का हम तो ईर्ष्या नहीं करते, दूसरे हमसे ईर्ष्या करते हैं, तब क्या करें, ये एक दूसरा प्रश्न है। हम तो किसी से नहीं करते, पर हमसे करते हैं दूसरे, लगे हुए हैं टांग खींचने में। उनके प्रति भी शुभ भावना रखने वाली आत्माओं को ऐसे एक्सरसाइज करने वाली आत्माओं को, ऐसे पैदल करने वाली आत्माओं को, ऐसे फल खाने के समय पे आग जाने वाली आत्माओं को, अब दूसरों के लिए बीज डालो ताकि वो फल खा सके, ऐसी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों लाने वाली आत्माओं को, ऐसे एक सेकंड भी लेट ना होने वाली आत्माओं को, समय की गाड़ी को एकदम टाइम पर, किसी किसी को आदत होती है टाइम पर निकलते और हमेशा ट्रेन दौड़ते हुए पकड़ते हैं, हमेशा एकदम एक सेकंड, ट्रेन अभी चालू हो रही है और फिर पैर रखते हो ट्रेन चालू, तो बहुत पहले पहुंच जाने वाली आत्माओं को, ऐसे दिल शिकस्त ना होने वाली आत्माओं को, ऐसे सेवा में सफलता प्राप्त करने वाली आत्माओं को, ऐसे स्वयं से प्रसन्न, दूसरे हमसे प्रसन्न, सेवा से हम प्रसन्न, बाप फिर हमसे प्रसन्न होगा, ऐसी सफलता मूर्त आत्माओं को, ऐसे समस्या को छोटा कर देने वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते, शिखर पर मिलेंगे, सभी अपनी यात्राएं चालू कर दें।